बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की, जीवन को पवित्र बनाने का जिस दिन भी उपाय शुरू कर दीजिएगा पर उसी दिन से शुरू हो जाते हैं। आज से हमने शुरू किया है अगर जीवन को पवित्र बनाना, तो आज का दिन पर्व का दिन है। जो लोग और पहले शुरू कर चुके हैं उनके लिए पर्व तो बहुत पहले से ही चल रहा था, जो लोग आगे करेंगे उनके जीवन में भी पर्व आगे ही घटित होगा। तो जीवन की पवित्रता जब भी हमें प्राप्त करनी हो पहले भूमिका बनानी आवश्यक है। आचार्य महाराज ने मुझे आज का पूरा वातावरण बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कि आहार जी में सन 85 में आचार्य श्री के साथ जब चतुर्मास कर रहा था तब लग रहा था। ऐसा ही छोटा सा क्षेत्र और उस पर बैठे हुए हैं सब लोग, और उन्होंने पर्व के पहले ये कहा था कि भूमिका बनानी आवश्यक है। किसी अच्छी चीज़ को प्राप्त करना हो तो पहले अपना मन उस अच्छी चीज़ को बनाने के लिए, उसे रखने के लिए, जैसे किसी को अपने घर बुलाना हो तो ज़रा साफ़ सफाई करना पड़ती, कहाँ बिठा लेंगे ये तय करना पड़ता है, और जब भगवान को बुलाना हो तब तो और ज़्यादा ठीक ठाक जगह करनी पड़ती है कि भाई आएंगे तो कहाँ बिठा लेंगे। इसी तरह जब अच्छाइयाँ हमारे भीतर आएँ तो उनको बिठाने के लिए भी अपने पास जगह होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने हलवा बनाने की प्रक्रिया सीखी और बनाया भी उसने, उसमें केसर डालना थी हलवा में, केसर डाल के बनने वाला था वो, डाली उसने केसर, लेकिन जिसने प्रोसीजर बताया था उसने तो कहा था कि बहुत अच्छा बनता और बहुत बढ़िया सुगंध आती, लेकिन बना नहीं वैसा। उससे जाके पूछा कि भाई तुमने जैसा प्रोसीजर बताया था वैसा हमने बनाया, केसर डाली थी, वजन डाली थी, फिर भी अच्छा स्वाद नहीं आया, बीच बीच में जो है खराब सी गंध आती रही, हुआ क्या क्या? बोले लाओ जरा देखें डिब्बी किस में से डाली थी केसर। तो वो केसर की डिब्बी ला करके दी तो उस केसर की डिब्बी में पहले हींग रखी हुई थी, तो उसमें से उसने डाली तो वो हींग की गंध तो आएगी उसमें। अब हम इसी तरह से अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहें और विषय कषाय की जो दुर्गंध अपने भीतर है उसको नहीं कम करेंगे तो मानिएगा कितनी भी अच्छी चीज़ हमारे पास आएगी पर वो सारी की सारी उसके संपर्क से खराब हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी कषायों को धीरे धीरे से कम करें, कषायों को डाइवर्ट भी किया जा सकता। पिछले दिनों अपन ने इसकी चर्चा करी थी कि क्रोध करना है तो किया जा सकता है, इसमें क्या बात है, लेकिन हमारे हाथ में होगा। हम मजबूरी में क्रोध करते हैं, अभी तो किसी ने हमारे मन का नहीं किया तो हम क्रोधित हो गए, ये हमारी मजबूरी हो जाती है। ऐसी मजबूरी ना रहे, वो हमें क्रोध दिलाए तो हम कह देंगे देखो अभी हमारा मन नहीं है करने का, हम संजा को करेंगे भाई अभी। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप हमें क्रोध दिलाओ और हम कर ही लें, नहीं ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता, जब हमें करना होगा तब करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। तो ऐसी मजबूरी ना रहे, हमारी मालकियत रहे अगर अपने ऊपर, तो मानिएगा कि हम कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये भी तो हम डिसाइड कर सकते। जब हर चीज़ के बारे में डिसाइड करते हैं तो कषाय के बारे में भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्रोध करना है तो कितना, कितनी मात्रा में करना है, जितने में हमारा बिगाड़ ना हो, सामने वाले का बिगाड़ ना हो। देखना बड़ा बड़ा मज़ेदार ये चीज़ है कि क्रोध हम करें भी तो किस लिए कर रहे हैं, दूसरे का अहित ना हो जाए और मेरा भी अहित ना हो। अगर ऐसा विचार आ जाए तो बताइए क्रोध कितनी मात्रा में होगा, वो क्रोध होगा ही ना, जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि हमारा अप्रोच कंस्ट्रक्टिव हो गया है, तो हमारी एनर्जी भी जो है वो जो डिस्ट्रक्शन के लिए जा रही थी वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी। क्रोध एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, इमोशन में आप कभी साइकोलॉजी में पढ़ें तो उसमें है कि क्रोध एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हमारे भीतर क्रिएट होती है, हम उसको कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो इसी तरह कि हम अपना इंटेंशन चेंज कर लें। माँ डांटती है बेटे को, ऊधम करके वापस लौटता है तब भी डांटती है, एक डांटना वो भी है, क्यों? बिगड़ रहा है, दूसरे के बिगड़ने से गुस्सा हो रहे हम, ये अच्छा क्रोध है। बेटा जिद कर रहा है, बीमार है और कह रहा है मिठाई खाएंगे, नहीं खाओगे, नहीं देंगे तुम्हें, फिर भी जिद कर रहा है। फिर भी मैं उठाऊं क्या, मारूं तेरे को? अभी बुलाती हूँ, अभी पकड़वा के बंद करवाती हूँ, पुलिस से बंद करवाती हूँ, और ज़्यादा अगर होगा तो मानता नहीं है तो लाठी उठा के और शायद मारने के लिए भी तैयार हो जाती। वो क्रोध है, वो काहे के लिए है कि खा लेगा तो बीमार सीमार पड़ जाएगा और फिर बहुत मुश्किल होगी, उसके हित के लिए कर दिया है। हम अपने क्रोध को इस तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने क्रोध को एक सही, आप बच नहीं सकते क्रोध करने से, मैं ये जान रहा हूँ, लेकिन क्रोध का इंटेंशन क्या है आप चेंज कर सकते हैं। आप दूसरे के हित के लिए, मैंने थोड़ा बहुत अगर अपने मन को ख़राब भी करा है तो इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि आप ठीक तो हो जाओ जिस किसी तरह। आपने शायद कभी, मैंने आपको बताया हो कि पंडित पन्ना लाल जी के बारे में, कि वो अपनी लाठी जो है स्कूल में और ड्राज में रखते थे और लॉक करके रखते थे लाठी, वो मारने की, वो प्रिंसिपल रहे उसमें विद्यालय में। तो बच्चे लोग जब श्लोक याद करके नहीं आते, संस्कृत वैसे ही कठिन तो याद व्याद नहीं होता था, तो कहते कि तुमने याद नहीं करा, और पहले डांटेंगे वो, गुस्सा होएंगे वो, फिर बाद में ड्राज खोलेंगे और दो ठोर लाठी से उसको मारेंगे, और फिर बाद में लाठी वहीं पटक के खुद रोने लगेंगे। अब बताओ, हमने तुम्हें मार दिया, तुम याद करके ले आते भैया, तो काय को हमें तुम्हें मानना पड़ता? हमने नाहक जो है तुम्हारे ऊपर क्रोध किया, हमें क्रोध करने का मन नहीं था, तुम ठीक से चलो तो हम तुम पे क्रोध काय को करें? तो दूसरे के हित के लिए भी कई बार हम इस तरह की चीज़ करते हैं, वो फिर भी ठीक है, लेकिन दूसरे का अहित करने के लिए अगर हम अपनी कषायों का उपयोग करते हैं तो वे कषायें हमारा ही पतन करती हैं। हम दूसरे के अहित के लिए क्रोध इत्यादि ना करें। जब कोई हमें क्रोध दिलाता भी है तब हमारे अपने कर्म का उदय है, ये कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी अरा, वसु क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम जल ले सी। उस समय समता धारण करें कि ये बाहर वाला तो सिर्फ निमित्त बन रहा है मुझे गुस्सा दिलाने में, मेरे ही भीतर कहीं कोई ऐसा अशुभ कर्म का उदय आ गया है, मैंने कुछ पहले किया होगा, उसको मुझे सहन करना चाहिए, अन्यथा ये तो अभी फिर से मुझे क्रोध कराने के लिए आ ही गया है, मैं और कर लूँगा तो मुझे कल के दिन फिर और ये संस्कार एक नया बन जाएगा। ऐसा विचार कर ले व्यक्ति, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि उसकी चली जाए, ये बाहर की जो वैभाविक स्थितियाँ हैं वो अगर उससे छूट जाए तो बहुत आसान है। और बाकी उपाय तो अपन जान चुके हैं कि क्रोध क्यों आता है और भी सारी चीज़ें। कषाय के बारे में एक चीज़ और अपन को जान लेनी चाहिए, और कुछ थोड़े से क्षमा के उदाहरण आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति में भी लोगों ने क्षमा धारण की है। असल में महापुरुषों के बारे में या कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने की विपरीत परिस्थितियों में भी क्षमा धारण की, वो अपने को याद आ जाए अगर उस समय, तो मुझे लगता है कि बहुत सहारा मिलता है। किसी का मैंने विपरीत परिस्थिति में क्षमा धारण करना, और अपन थोड़ी सी मुश्किल आ गई और फिर भी क्रोध कर बैठे, और अगर वो चीज़ याद आ जाए तो एक क्षण भी लगता है कि नाहक परेशान अपन हो रहे हैं। तो वो भी आपको मैं चाहता हूँ कि वो भी आपसे बात करूँगा। पहले ये समझ लें, एक जगह कहीं लिखा है, मैंने पढ़ा, अणथोवम बणथोवम अग्निथोवम कसाय धोवम। ऋण ले तो ऐसा लेते समय लगता है थोड़ी सा तो ले रहे हैं उधार, घाव होता है तो लगता है छोटे ही तो है मिट जाएगा, अग्नि कहीं एक आध भगूदर में दबी हुई हो लगता छोटी सी तो है कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन ये सब जो है छोटी होने के बाद भी इनको छोटी नहीं समझना चाहिए। कषाय थोवम चा, इसी तरह कषाय थोड़ी सी तो हमने करी है, ज़्यादा थोड़ी करी, और लोग तो और ज़्यादा करते, हमने तो थोड़ी करी है, ऐसा कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं लेकिन बाद में बहुत बड़ी हो जाती हैं। थोड़ा सा ऋण लो और हो सकता है कि ऋण चुकाते चुकाते पूरी ज़िंदगी चुक जाती है और ऋण पूरा नहीं हो पाता, और ये बाहर का ये वाला ऋण हो तो भी ठीक है भैया, पूरी ज़िंदगी में चुक जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में एक बार अगर हमने कषाय का ऋण ले लिया तो उसको चुकाने में कई कई ज़िंदगियाँ लग जाती हैं, इसलिए इसको छोटा नहीं समझना। घाव छोटा सा हो जाए तुरंत उपचार कर लेना, वरना नासूर बनने में देर नहीं लगती, सड़ना शुरू हो जाता है और फिर बढ़ करके पूरा पैर काटने लायक हो जाता है। इसी तरह अग्नि एक छोटी सी चिंगारी, संभव है कहीं पड़ी रह जाए और उसे ईंधन मिल जाए तो पूरे महल को भी जला के नष्ट कर सकती है, इसलिए इसी तरह ये कषाय इसकी तासीर समझ करके इसे छोटा नहीं मानना। क्रोध या कोई भी कषाय आती है, क्रोध पे हमारा ज़्यादा ध्यान चला जाता, असल में अगर इसका तंतु कहाँ से है ये देखें अगर, तो लोभ से शुरुआत होती है, अपनी बात मनवाने का लोभ, अपने मन का करवाने का लोभ, ये सारा लोभ धीरे धीरे जो है वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोभ कर देते हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए थोड़ी बहुत मायाचारी करते हैं। जब मायाचारी पूरी नहीं होती है तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचती, और जब अहंकार को चोट पहुंचती तो क्रोध आना शुरू हो जाता है। सब कशाएँ एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म हो करके और अल्टीमेटली क्रोध में जा करके कन्वर्ट होती है। पहले तो लोभ ही होता है, उसके बाद फिर क्रोध में आके कन्वर्ट होता है। हमें देखना चाहिए जिसका जितना कम लोभ होगा उतना कम क्रोधी होगा। ये आप अपने अनुभव से खुद देखेंगे, चाहे अपनी बात मनवाने का लोभ हो, चाहे अपने आपके जो भी अपन करते हैं उस सबको अपने अनुसार करवाने का मन हो, तो इस तरह से हम जीत सकते हैं। बहुत आसान है, डाइवर्ट कर सकते हैं क्रोध को, और ना हो इसकी भी हम कोशिश कर सकते हैं, पोस्टपोन भी कर सकते हैं। हम अभी नहीं करेंगे, हम फिर बाद में करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर कोई हमें क्रोध दिलाता है तो हम ये विचार कर सकते हैं कि बेचारा गरीब आदमी है, इसके पास एक अच्छा मीठा सा शब्द भी नहीं है, इसके पास जैसा है वैसे ही तो देगा, हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी ने एक बुरी बात कह दी तो हम उस समय ये विचार कर सकते हैं कि इसके पास अच्छी बात नहीं थी इसलिए इसने बुरी दी, जो जो दे वो रख लेना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ बुद्ध के साथ, ऐसा हुआ, वो घटना आपको सुनाऊँ। ये लड़की सुनाया करते हैं, वो घटना शायद सुना चुके हैं, वो बुद्ध वाली, उसकी क्षमा वाली, हाँ नहीं सुनाई, चलो तो सुना देते हैं। तो क्या हुआ एक बार कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बहुत दिन की बुराई बुराई होगी रहती है, बुराई तो बहुत दिन तक चलती है, और फिर ऐसे व्यक्ति से बुराई जो कि उस बुराई का जवाब भी नहीं देगा, ऐसे व्यक्ति से बुराई मोड़ ले ली। तो बुद्ध के पास आकर के गालियाँ वालियाँ दी, तो उन्हें कुछ नहीं कहा। अब जब बहुत सारी गालियाँ दे ली, अब कुछ भी नहीं बचा देने के लिए, सामने वाला रिटर्न ही नहीं कर रहा, रिटर्न करे तो फिर से दें, और अगर हम एक बात कहें और आप उसमें दो कहो तो फिर हमें मौका मिलता है कहने का, और अपने मन से कहते चले जा रहे हैं। उसने कुछ नहीं कहा, बुद्ध ने चुपचाप बैठे मुस्कुराते रहे। अब जब चुप होने लगा तो उसके मन में आया कि क्या करूं, अब लास्ट मोमेंट में इस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा तो थूक दिया, गुस्से का एक्सट्रीम हो गया, थूक दिया बुद्ध के ऊपर। तो बुद्ध ने आसानी से जो है पहुंच लिया और बड़े प्यार से कहा कि कुछ और तो नहीं कहना, कुछ और तो नहीं कहना, शेष रह गया हो तो। आनंद तो तिलमिला गए, आनंद उनके शेष थे बुद्ध के, वो तिलमिला गए। वो व्यक्ति थूक करके वापस लौट गया, आनंद से रहा नहीं गया। आनंद ने कहा कि आपको गुस्सा नहीं आया उसने इतनी गालियाँ दी? तो बुद्ध ने कहा कि आनंद कोई हमें कुछ दे और हम ना लें तो बताओ आनंद वो किसके पास रहता है? जिसने दिया था उसी के पास ना, मैंने लिया नहीं, उसने दिया था मेरे काम का नहीं था, मैंने नहीं लिया, मेरे काम का होता तो रख लेता। आनंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो आश्चर्य उससे भी ज़्यादा हुआ दूसरे दिन। वो आदमी वापस लौटा दूसरे दिन सुबह सुबह और बुद्ध के चरणों में क्षमा मांग रहा था। उसको अपनी ही गालियाँ चुभती रहीं सारी रात कि मैंने उसको गाली दी ऐसे आदमी को जिसने कुछ भी नहीं कहा, और फिर मैंने उसमें थूक भी दिया तब भी उसने कुछ नहीं कहा। अब वो गालियाँ रिटर्न हो गई थी ना, बुद्ध ने दी नहीं थी तो उसी के पास रह गई थी, वो उसी को चुभती थी, तो जाकर के क्षमा मांगना शुरू की। लेकिन देखो तो कैसी क्षमा है कि हम क्रोधी व्यक्ति के ऊपर क्षमा करके भी एहसान ना माने कि हमने जाओ तुम्हें क्षमा कर दिया, तब वो वास्तव में उत्तम क्षमा कहलाती है। तुम तो वो आदमी हो ही नहीं जिसने कल गाली दी थी, अगर तुम वही होते तो आज भी शायद गालियाँ ही देते, तुम तो कोई दूसरे आदमी हो, मैं भी तो कोई दूसरा हो गया, वो पेड़ नहीं है, वो मैं नहीं हूँ। ए मैन कैन नॉट स्टेप इन रिवर ट्वाइस, दो बार एक ही आदमी एक नदी में पैर नहीं रख सकता, क्योंकि बहुत पानी बह गया, और वो आदमी भी अपनी कितनी सारी पर्यायें उस एक बार पैर रखने के बाद दूसरी बार जब रखेगा तब तक कितनी पर्यायें उसकी गुजर गई और कितना पानी उसमें से बह गया, वो बहुत पुरानी बात हो गई जब तुमने गुस्सा हुए थे, वो कोई दूसरा आदमी था, अब क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम तो अपने में अपने आप ही शांत हो गए हो जो तुम्हारा अपना स्वभाव है। इस तरह से भी हम अपने जीवन को, अगर इन उदाहरणों को थोड़ा सा ध्यान रखें तो जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और बहुत प्रैक्टिकल एक आपको चीज़ बताऊँ, वैसे मैं इस चीज़ को कई बार, पर कुछ लोग नए हैं उस हिसाब से, जो पुराने हैं वो फिर से उसमें रख लें। मैंने एक उदाहरण दिया था कि ऐसे ही क्रोध के ऊपर चर्चा कर रहे थे MD Zen कॉलेज में आगरा में, कि भाई हम अगर चाहें तो नहीं भी करें क्रोध तो भी हो सकता है, और असल में ये हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, वातावरण कैसे भी हो, हम थोड़ा सा उसको टॉलरेट करें, हम ओवरलुक करें, अनदेखा कर दें, अनसुना कर दें उन सारी चीज़ों को और अपने मन को थोड़ा सा डाइवर्ट करें तो जीता जा सकता। तो वो बात उन्होंने सुन करके एमडी जन से, वो बाहर निकले होंगे भाई, तो निकले तो गाड़ी जैसे उन्होंने टर्न की वहाँ से भी गाड़ी आ रही थी, तो दोनों गाड़ियाँ आपस में टकराई, हल्के से क्रैश हुई, रुक गई। तो बोले मुझे जिस व्यक्ति ने सुनाया उनने कहा कि मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया कि ये आदमी ठीक से नहीं चलता। फिर अचानक जो है आपकी बात याद आई, मुझे क्रोध के ऊपर मैं सुन के ही तो लौट रहा था, तो मुझे वो वाला किस्सा याद आ गया कि अरे इसमें क्या बात है, हो सकता है। तो बोले मुझे किस्से की वजह से मुस्कुराहट आ गई मेरे मुँह चेहरे पर, तो मैंने देखा सामने की कार वाला भी जो है थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, मुझे मुस्कुराते देख कर वो भी मुस्कुरा दिया। अब तो बात जो है, नहीं तो गुस्सा आने में देर नहीं लगती थी, दोनों मुस्कुरा दिए। तो बोले मैंने हाथ बाहर निकाला कि आप निकाल दीजिए, उसने भी हाथ बाहर निकाला कि आप आगे निकाल दीजिए। फिर दोनों अल्टीमेटली 5 मिनट तक खड़े रहे दरवाज़ा खोल के, दोनों ने एक दूसरे से बड़े उससे पूछा कि आज एक बहुत छोटी सी घटना ने, और हम हो सकता है कि दरवाज़ा खोल के और आपको कुछ ना कुछ चोट पहुँचाते आपस में, लेकिन हमारे मन में ऐसा क्या हुआ, और बड़े शांति से ये इतनी छोटी सी, ये इतनी बड़ी घटना संभव हो सकती थी। ऐसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी सी, हम वातावरण को हल्का बना दें। कोई सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हम हल्का उसको डाइल्यूट कर दें। अपन लोग क्या करते हैं, और ईंधन डाल देते हैं उसमें, तो ईंधन डालेंगे तो आग और बढ़ेगी। तो कोशिश करिएगा। एक और उदाहरण मैं आपको सुनाऊँ, वो था बच्चों ने पढ़ा होगा स्कूल में, बस 2-3 मिनट और फिर ख़त्म करता हूँ। बच्चों ने स्कूल में पढ़ा होगा कि एक लड़का खेल रहा था बगीचे में, आम के बगीचे में, और वो आम तोड़ रहा था, पत्थर फेंक करके तोड़ रहा था। अब उसको नहीं मालूम कि कब राजा साहब वहाँ से निकले और कब वो पत्थर उसका तोड़ आम के लिए फेंका था, राजा साहब के ऊपर गिरा। तो सैनिक दौड़े, उन्हें पकड़ के लाओ उसको जिसने कि वो पत्थर फेंका है, राजा साहब के सिर पर गिरा पत्थर, और पकड़ के लाए तो वो तो चुपचाप बेचारा हड़बड़ा रहा था कि अब क्या होने वाला है। तो कहा कि तुमने पत्थर फेंका था? कहने हाँ साहब पत्थर फेंका था। तो काहे के लिए फेंका था? हमने आम तोड़ने के लिए फेंका था पत्थर। तो वो राजा साहब के ऊपर गिरा है, हो सकता है गिरा हो, तो तुम्हारे लिए जो है जाओ दंड दिया जाता है। तो उसको दंड वंड सुना दिया। दंड सुनाने के बाद भी वो मुस्कुराने लगा, तो सैनिक बड़े परेशानी में, राजा भी एक बार सख्ती में आ गया कि इतना बड़ा दंड सुना दिया इसको, इसके माता पिता रो रहे हैं फिर भी ये लड़का हंस रहा है। तुमने पास बुला के पूछा कि क्यों बेटे हंसते क्यों हो? बोले कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि ये मेरे राजा नहीं हो सकते, मैंने पत्थर फेंक के मारा था एक पेड़ को, उसने तो मुझे पका हुआ आम रिटर्न किया, और इतने बजे राजा को अगर पत्थर लग गया तो उसने मुझे दंड दिया। बड़ा अजीब है ये, कहते हैं राजा है, राजा कैसे हो सकता है? जब पेड़ मीठा फल दे सकता है तो राजा को तो और ज़्यादा मीठा फल देना चाहिए था एक पत्थर लगने के बाद में। तो उसकी छोटी सी बुद्धि थी, अपन उस छोटी सी बुद्धि को तोलें तो अपन इतने बड़े होने के बाद भी ऐसी इस घटना से शिक्षा दे सकते हैं कि अगर कोई हमें कुछ क्रोध दिलाने वाली बात भी करता है तब भी हमें रिटर्न क्या करना है उसको, क्या क्रोध ही रिटर्न करना है, तो फिर हमने और उसमें क्या फ़र्क हुआ, और हम कोई अच्छा ही रिटर्न करते हैं तो शायद उसके जीवन में भी शांति आएगी और हमारे जीवन में तो शांति रहेगी। ऐसा सब सोच करके और अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करिएगा। नमोकार मंत्र तो अपन संडे को ही किया करेंगे, आज मेरा गड़बड़ भी है थोड़ा सा, तो ऐसी भावना के साथ में अपन कि हमारे सबके जीवन में विशुद्धि आवे, परिणामों में निर्मलता आवे। ये कषायें हमारा बड़ा बिगाड़ करती हैं, अब ये कषायें हम नहीं करेंगे ऐसा मन बना लें। जो हमारा बिगाड़ करता है उससे हमारा ज़्यादा वास्ता नहीं होना चाहिए, उससे हमारा ज़्यादा संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये कषायें हमारे जीवन का बिगाड़ करती हैं, हमारी निर्मलता को समाप्त करती हैं, तो इन कषायों से जितना बने उतना बचने की कोशिश करें। ऐसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर बोले।